कल्याणी चल रही थी। 1590 का पैकेट क्लास 32 नंबर के रजिस्टर में 69 पर पहली लाइन। तुम बच्चों में भी ऐसे हैं जो सब धारणा नहीं कर सकते हैं। ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी शिशु में रहे। अभी बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। तुमको ले जाएगा बाबा, साथ में ले जाएगा 84 जन्म लेने वालों को, और बाकी को नहीं ले जाएगा क्या? जाएंगे तो सभी, लेकिन हरेक का अपना ग्रुप अलग अलग होगा, और ग्रुप का मुखिया भी साथ ले जाने वाला अलग अलग होगा। इसलिए कहा कि ये 84 का चक्र अगर बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी में रहे। क्यों? क्योंकि जिनके पूरे 84 जन्म है वो 9 लाख हार में आ सकते हैं, परमात्मा के गले का हार बन सकते हैं। सच्चा सच्चा मासूक आया जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करके वो आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है शांत स्वरूप, ये आर्गन से मिलते हैं, सब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वो सब को ले जाते हैं तो सबको शांति मिलेगी। सत्युग में भी तुमको शांति दी है तो सुख भी है, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। ये बात भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि दो अभिमान में रहते, दो ही अभिमानी होते ही नहीं। बाप शांति तो सबको देते। चित्र में संगम पर जाकर के दिखाओ, कौन से चित्र में गोले के चित्र में संगम पर जाकर के दिखाओ, उस समय तो सब अशांत है। सतुग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। वहां दिल भर करके शांति मिलती है। तुमको राजाई में शांति भी है और सुख भी है। सतुग में पवित्रता सुख शांति सब है तुमको। मुक्त धाम कहा जाता है, ठीक है मुझे। वहां पति तो दुखी कोई नहीं होंगे। कहा स्वीट होम में जो बाप का घर है उसमें कोई पति तो दुखी नहीं होंगे, लेकिन होंगे कौन? बाप के घर में कौन होंगे? आत्माएं, आत्म की स्थिति में रहने वाले, दो दानी की स्थिति में होंगे तो फिर बाहर की दुनिया में बुद्धि भटकती रहेगी। तो जैसे कि बाप के घर में है ही दुख सुख की कोई बात वहां होती नहीं है। कहां? शांति धाम। बाप के घर में न दुख और न सुख। जैसे जीते जी मर गए तो मंदिर कहां बनाए जाते हैं? शमशान घाट में। शमशान घाट में कौन पड़े रहते हैं? मुर्दे। तो जो सूर्य मरे हुए होते हैं वो बाप के घर में रहते। पूरे मरे हुए नहीं होंगे तो बुद्धि से बाप के घर में रहेंगे भी नहीं और अंत में भाग भी जाए। तो शांति का अर्थ समझते नहीं है। बाबा रानी के हार का निशान देते हैं, क्या मिसाल है, गले में हार पड़ा हुआ था और चारों ओर ढूंढती थी। तो ये शांति भी गले का हार है। अब बाप कहते हैं शांति सुख सब ले लो। कहते हैं आयुष्मान भव, सुख भी देता हूँ शांति भी देता हूँ मुक्ति भी देता हूँ जीवन मुक्ति भी देता हूँ, लंबी आय वाले बनो। वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा, बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। कभी छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़ करके जाए हम यह बनूंगा। अभी पढ़ रहा है तुम भी जानते हो हम सचिव में जाएंगे, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है। तो कितनी खुशी में रहना चाहिए, जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी ऊंची खुशी। क्या कहा, बेसिक नॉलेज होगी तो पढ़ाई कितनी हुई, ऊंची पढ़ाई कहेंगे वो तो बेसिक नॉलेज ही है। और ऊंची पढ़ाई होगी तो खुशी भी ऊंची होगी, एडवांस नॉलेज होगी तो खुशी भी एडवांस होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम अध्यक्ष सामने है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एम अध्यक्ष सामने है, सूत्र सामने रख दें तो एम अध्यक्ष सामने हो जाती है क्या है? क्या है बुद्धि में, बुद्धि में आ जाने से कि ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है सामने हमारे रखा हुआ है तो खुशी चढ़ जाएगी है? अगर ये बुद्धि में बैठ जाए कि चैतन्य में जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं वो हमारे सामने हैं, तो खुशी कितनी होनी चाहिए। परंतु चलते चलते गिर पड़ते, हमारे रास्ते ही कैसे हैं, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना। तुम्हारी शरीर से वृद्धि को तब पाएगी, कब पाएगी तुम्हारी शरीर से वृद्धि को कब पाएगी, जब गिरना बंद हो जाएगा, कब गिरना बंद हो जाएगा है? इंप्योरिटी से गिरते हैं और प्योरिटी से चढ़ते हैं, तो शरीर से वृद्धि को कब पाएगी, जब कुमारियां मैदान में आएंगी। सबसे जास्ती प्योरिटी किसी होती है, कुमारियों में सन्यासी भी उनके पास पड़ते हैं। तो मैदान कौन सा है यहाँ, यहाँ कौन सा मैदान है, कौन सी लड़ाई का फील्ड है? अरे महाभारत का फील्ड है सिर्फ। दादा कहते हैं महाभारी महाभारत गृह युद्ध का फील्ड है। वो तो स्थूल लड़ाई महाभारत की समझ लेते हैं, स्थूल लड़ाई की बात नहीं है। ये कौन सा युद्ध है, ये विकारों का सूक्ष्म युद्ध है और ये बहुत कड़ा भी युद्ध है। तो बहुत सहज भी है, अगर बाप की याद है तो बहुत सहज। बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जब तो जानते होंगे ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, कैसी दुनिया में जाते हैं? पत्थरों में वहाँ बकरी होगी है? बकरी तो वहाँ होगी नहीं, भेड़ बकरियों का देश ही नहीं होगा, पंछियों का। वास्तव में ये जो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया होगी, स्वर्गीय संगम युग का वो हिस्सा, उसमें चाहे शेर जैसा हो पुरुषार्थी और चाहे बकरी जैसा पुरुषार्थी हो, तो दोनों इकट्ठे ज्ञान जल पिएंगे। बात हरेक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है, उसका तो नाम ही पड़ता है स्वर्ग। उनके से ऊंचा स्वर्ग कौन सा हुआ? पैराडाइज में भी नंबर है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। लक्ष्मी नारायण में भी नंबर है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। तो ऊंची से ऊंचा स्वर्ग कौन सा हुआ जिसका शास्त्र में गायन है? मुसलमानों के शास्त्र में भी गायन है उसका, जन्नत। क्रिश्चियंस में भी उसका गायन है, पैराडाइज। लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, भारत में पैराडाइज था, और भारतवासियों में तो है ही स्वर्ग। तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोले क्या बोले हैं? क्या बोले? माँ बाप की जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी किसके ऊपर आ पड़ती है? कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोले अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ है? ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। मनस सतयुग में जाने की बात नहीं है, कहाँ जाने की बात है? संगम युग ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसा संगठन होगा, ऐसा ब्राह्मणों का किला होगा, जहाँ शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते। बाकी पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। अब मैं योगिन बनी हूँ, तुम कहते हो विकारी भोगिन बनो। कौन कहता है? लौकिक माँ बाप। तुमको शर्म नहीं आता है? उसकी कुमारी में ताकत आ जाएगी है? आज की दुनिया में है? आज की दुनिया में जहाँ स्त्री को अबला बना के रखा हुआ है घर घर में, वहां कुमारियों में इतनी ताकत आ जाएगी? ये कौन सा करिश्मा होगा है? ये कौन सा जलवा होगा? बाप बनकर के हमको काम कटारी के नीचे डालना चाहते हो? बात करने की खड़ाई चाहिए किसने? कुमारियों ने। तो खड़ाई कैसे आएगी? ऐसी ऐसी जब कुमारियां निकलेंगी फिर देखना कितनी जल्दी सर्विस होती है। परंतु चाहिए नस्तो मोह नस्तुमोहा से क्या कनेक्शन? नस्तुमोहा से कनेक्शन ये है कि कुमारियां तो होती हैं स्वतंत्र। कुमारियां अगर स्वतंत्रता की उस स्टेज पर उतर आए तो उनको माँ बाप भी नहीं रोक सकते, लौकिक जीवन में भी नहीं रोक सकते। वहां तो आत्माओं की पावर मिलती है, और यहाँ पावर किसको मिलती है? سمجھ سے جاتی شہد کس کے لیے ہوتا ہے؟ کماریوں کے لیے. پاور کس کی ملتی ہے؟ پرماتما کی پاور ملتی ہے. تو نفس و موہ چاہیے. ایک بار مر گئی تو پھر یاد کیوں آنی چاہیے؟ کاہے سے مر گئی؟ دیہ اور دیہ کے سمبندھوں سے. پرنتو بہتوں کو گھر کی بچوں آدی کی یاد آتی رہتی ہے. کماریوں کی بات ہو رہی, کماریوں کے بچے کہاں سے آ گئے؟ ہاں, کیونکہ براہمنوں کی سنگم کی دنیا میں برہما کماریاں بھی تو کماریاں ہیں, ان کے بچے کون سے ہوئے؟ الگ سے بچے ہوئے نا. جان میں چلنے والے تو بچے ہیں نا, جن کی وہ ٹیچر سے ہیں. تو بہتوں کو گھر کی بچوں آدی کی یاد آتی رہتی ہے. جیسے بندری ہے, پھر باپ کے ساتھ یوگ کیسے لگے گا؟ اس میں تو یہی بدھی میں رہے کہ ہم بابا کے ہیں. یہ پرانی دنیا تو ختم ہوئی پڑی ہے. باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرو. اچھا, میٹھے میٹھے سکون کے بچوں پر مات پتا باپ دادا کا یاد کر, گڈ مارننگ, سوانی باپ کی روحانی بچوں کو نمبر. آج سوانی ہے 32 نمبر کے رجسٹر میں 70 پیج پر 20590 کا پراپر کلاس ریکارڈ چلا ہے. تمہیں رات گوائی سوئے کے, دیوس گوایا کھائے کے, منوا جیون امول ہے کوڑی بدل جائے رے. اس کے بدلے میں جا رہا ہے ہیرے سمان جیون کوڑی کے بدلے. کوڑی لی اور ہیرے سمان جیون چلا گیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایسا گن مرغ ہوگا جو کوڑی لے گا اور ہیرے سمان جیون دے دے گا؟ ہیرا دے گا اور کوڑی لے گا؟ کیا ارتھ ہوا اس کا؟ ہاں, جو وکار میں جاتے ہیں وہ جیسے پانچویں بار سے نیچے گرتے ہیں. اب تک کی ہوئی ساری ساری کمائی ان کی کٹ ہو جاتی ہے. سنگ سے رنگ میں لگتی ہے ساری کمائی, جیسے کوئی بھری ہوئی بیٹری ہو اور اس کا سنگ خالی بیٹری سے کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ساری ڈسچارج ہو جائے گی. اوم شانتی. یہ کس نے کہا؟ روحانی باپ نے کہا. وہ ہے اونچے سے اونچا, سبھی منشیوں سے بھی, سبھی آتماؤں سے بھی اونچے. کس سے اونچا؟ اونچ سے اونچے اور نیچے سے نیچے. یہ کہاں کی بات ہوئی؟ سوکشم وطن کی, مول وطن کی. مول وطن میں اونچ اور نیچ کی بات نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پرم دھام کے چتر میں سب سے اوپر شیو بابا کی بندی کیوں دکھائی؟ سب سے اوپر دھرم پتا ہے, پھر ان کے دھرم کے فالوور کیوں دکھائے؟ واسطو میں پرم دھام میں کوئی ایسا جھاڑ نہیں ہوگا آتماؤں کا, کیونکہ پرتھوی تو گول ہے. گول پرتھوی پر ادھر ہندوستان ہے, بھارت ہے, تو گول پرتھوی کے دوسری اور امریکہ ہے. تو ایسے تھوڑے کہیں گے کہ پرم دھام اوپر ہے. اور یہ تو کہا بھی نہیں جاتا. کہا جاتا ہے سورج چاند ستاروں کی دنیا سے پار. تو پرتھوی کے چاروں طرف سورج چاند ستارے ہیں یا صرف اوپر کی اور ہیں؟ امریکہ والے کہیں گے ہمارے اوپر کی طرف, تو اب وہ اپوزٹ سائڈ ہو گئی. بھارت والے کہیں گے ہمارے اوپر اونچی اسٹیج میں. تو ایسا کچھ نہیں. پرے سے پرے کا مطلب ہے دور. پرتھوی کی پرد سے بہت دور, اور وہ چاروں طرف ہو سکتا ہے. جو آتما جتنی جاسی پاور سے لے گی وہ اتنے جاسی دائرے کو کور کر کے رہے گی. अपनी संपन्न स्टेज में, जैसे सुप्रीम सोल सबको कवर करके रहेगा, जब अपने संपन्न स्वरूप में प्रैक्टिकल स्टेज में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा प्रजापिता की होगी, तो वो भी सुप्रीम सोल शिव को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया की सर्व आत्माओं को कवर करके रहेगी, सबको अपनी परिधि में ले लेगी। जैसे मिलिट्री में होता है, बड़े से बड़ा जो ऊंचा मार्शल होता है वो सारी मिलिट्री को कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है, छोटे ऑफिसर उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचे बात बात हुई उसको सारी दुनिया की, ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाला है इसलिए ऊंचा कहा जाता है, वो सभी मनुष्यों से भी ऊंचा है और आत्माओं से भी ऊंचा है। क्या मतलब? आत्मा की स्थिति में भी सबसे ऊंचा है और मनुष्यों में भी सबसे ऊंचा है। मनुष्यों के साथ जब हम उसकी तुलना करेंगे तो शिव बाबा तो मनुष्य नहीं कहा जाता है, वो तो भगवान है। तुलना एक जैसी वस्तुओं के साथ होती है, तो वो सुप्रीम सोल वास्तव में ऐसे मनुष्य में प्रवेश करता है जो सब मनुष्यों से ऊंच पाए तो बजाने वाला प्रजापिता, सब में आत्मा ही है ना, फिर उनको है पार्ट बजाने के लिए। अभी तुम देखो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, वो भी हद की पवित्रता का पालन करते, इसलिए उनका मान रहता है। और शिव बाबा एवर प्योर, उसका मान क्यों नहीं रहता है? क्यों नहीं है उसका मान रहता है? क्योंकि जिस शरीर को धारण करता है वो शरीर पावन नहीं होता है, कैसा होता है? अपितु होता है, इसलिए उसका मान नहीं हो सकता। कब होगा मान? जब सारी दुनिया विनाश के कगार पर जिस सेकंड खड़ी होगी उसमें 500 करोड़ मनुष्य आत्मा उसके सामने जीत जाएंगे, एडम आदम आदि देव स्वीकार कर लेंगे, सारी मनुष्य उसको अपना बाप स्वीकारेगी। तो जैसे सन्यासी जो हद की पवित्रता धारण करते हैं उनके भी 5 तत्वों के शरीर की कितनी पूजा होती है, मान हो जाता है। अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं, ये बेहद का बाप तो है दुष्ट, मेहनत तो नहीं उसकी है, क्योंकि जो भी पायस बजाय रहा है वो दुष्ट पायस बजाय रहा है। कैसे दुष्ट है? तुम बच्चे समझते हो सो बाबा ऊंचे से ऊंचे है, उनसे ऊंचा कोई नहीं है, धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि धर्मराज नहीं है, लेकिन धर्मराज उनके साथ है। कौन है धर्मराज? धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा की सोल। धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, क्यों कहा गया? युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहा, वो आत्मा जब तक युद्ध पूरा नहीं होता है विकारों का तब तक उस आत्मा को सत्यनीति रंगमंच पर पार्ट बजाने ही बजाने, भले अपना शरीर नहीं है तो भी किसी न किसी शरीर में इंस्पिरेट करने का पार्ट बजाने ही बजाने। तो धर्मराज भी उनके साथ है, उनके साथ है, उनके साथ है। कौन बोल रहा है? सुप्रीम सोल बोल रहा है। कहाँ बैठ के बोल रहा है? ब्रह्मा के तन में बैठ करके बोल रहा है, ब्रह्मा की आत्मा के बाजू में। फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं कि धर्मराज भी उनके साथ है? ऐसे क्यों नहीं कहते धर्मराज भी मेरे साथ है? जब ब्रह्मा की सोल ही धर्मराज है तो मेरे साथ है, ऐसे क्यों नहीं बोला? تم نے کیسا ہے تو کیوں بولا؟ جن کی طرف اشارہ کیا ان کے ساتھ ہے، مانا وہ سو بابا کا پارٹ، پریکٹیکل پارٹ، پرماتما پارٹ، بھوشیہ میں پرتکش ہونے والا ہے، کیونکہ بھکتی مارگ میں کھما ان سے مانگتے ہیں، ان سے بچنا دھرمراج سے دنڈ دینے والا ہے، کھما کوئی نہیں مانگتا دھرمراج سے، کھما کس سے مانگتے ہیں؟ بھگوان سے، کھما ان سے مانگتے ہیں، دھرمراج ان کے ساتھ ہے، کہتے ہو بھگوان کھما کرنا، اب بھگوان کیا کریں گے؟ فائل تو دھرمراج کے ہاتھ میں پہنچ گئی، فائل جب دھرمراج کورٹ میں پہنچ جاتی ہے، مان لو کسی نے چوری کی کسی کی اور اس نے رپورٹ کر دی، وہ پکڑ گیا، فائل پہنچ گئی کورٹ میں، تو اب اس سے دو معافی مانگے بیٹھ کر کے، ہم کو معافی دے دو تو کیا ایسے چھوٹ جائے گا کیس؟ آج کل راشٹرپتی مرضی کرتے ہیں، سپریم کورٹ پھر ان کا دست کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھگوان کیا کریں گے؟ دھرم راج کے ڈنڈے کھائیں گے کیا؟ بھگوان بھی دھرمراج کے ڈنڈے کھائیں گے، یہاں گورنمنٹ کو جیل میں ڈالے گی، وہ دھرمراج گرو جیل میں دنڈ دیں گے، کون سی جیل ہوگی؟ گرو جیل، یہ گرو جیل تو سزا کھاتے ہی آئے 63 جنے، کیونکہ نئی بات ہو گئی کیا؟ 63 جنم دھرمراج ان سزا نہیں کھاتے آئے گرو جیل میں، وہ گرو جیل کی بات نہیں ہے، یہاں جانی بھی بے حد کا ہے، بکتی مارگ کا ایڈریس سمجھ لیا، دھرمراج بھینسے کا سوار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ہے جان گرو جیل، جان میں جو آتما چلتی ہیں بار بار پاپ کرتی ہے، تو ان کے اوپر 100 گنا 1000 گنا پاپ کا بوجھ پڑتا ہے، جیسے جیل برڈ ہو جاتے ہیں، جیسے جیل میں پیدا ہونے والی چڑیا ہو، اس کو سوتنتر کر دیا جائے تو کہاں جب ٹھہرے گی؟ تو جیل میں چلی جائے گی، بھوگنا بھی بھوگنی پڑتی ہے، جس کو کرم بھوگ کہا جاتا ہے، ابھی تم جانتے ہو کرم بھوگ کون بھوگتے، کیا ہوتا ہے؟ ضرور ایشور کے ڈائریکشن سے ہی بھوگتے ہیں، کہتے ہو پربھو کھما کرو، دکھا رہے سکھ دو، اب بھگوان کو دوائی کرتے ہیں کیا؟ وہ تو خود کچھ بھی کر نہیں سکتا، کون تو جو جیسے کرم کرے گا ویسے اس کو پراپتی سوتن ہوگی، تو بھگوان کو کیوں کہتے ہیں؟ تو رحم کرو، کھما کرو، دکھا رہے سکھ دو، کیونکہ بھگوان کے ساتھ صرف دھرمراج بھی ہے، برا کام کرنے سے ضرور بھوگنا پڑتا ہے، گرو جیل میں سزا بھی ملتی ہے، ساکشاتکار سب ہوتے ہیں، بغیر ساکشاتکار کے سزا نہیں ملتی ہے، گرو جیل میں تو کوئی دوائی آدھی نہیں ہے، وہاں سزا بھوگنی پڑتی ہے، جب دکھی ہوتے ہیں تب کہتے ہیں بھگوان اس جیل سے نکالے، کہاں 63 جنم نہیں کہتے، 63 جنم کی تو بات ہی نہیں، وہاں تو بھگوان ہوتا ہی نہیں، بات کہاں کی ہے؟ 63 جنم کی دنیا میں ہی جب جان گئے سوتر بابا کیسے رہتے ہیں، ان کی بھی بڑی ہسٹری، جیسے توپ آیا کتنے جا کر کے ماتھا پوچھتے ہیں، ابھی تم دیکھو کس کے سامنے تم بیٹھے ہو، تو تم سے اونچا باپ ہے، تم سے اونچا، تو سب سے بھی اونچا، شنکراچاریہ آدھے دھرم پتاؤں سے بھی اونچا، دھرم تو ہے گپت اور سبھی سے تو سبھی دیکھنے میں آتے،
यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पाँव आदि है नहीं, ये फूल आदि चढ़ाते हैं, ये भी कौन लगे? मंदिर में जो भी भोग लगता है, फूल आदि चढ़ाए जाते हैं, लेता कौन है? पुजारी लेता है ना, तो इनके हाथ से ही लेना होगा। अगर चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं है। जैसे वो शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई प्रिय नहीं, तो बात कहते हम पतितों का तो कुछ भी कैसे लेंगे? दुनिया में ही पतित सारे तो पतित हैं, और सुधारा कहते हम पतितों का कुछ कैसे लेंगे? इसका मतलब लेगा कौन? करनी है तो हमने लेगा क्या? नहीं लेगा। मरते हैं तो कर्मी घूर को देते हैं सब कुछ, हमको फूल आदि की दरकार नहीं है। बक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर ही नहीं है। कौन कहता है? तो वो ज्योत बिंदु की बात है, उसको अपना शरीर नहीं है। लेकिन मुर्मू बोला है कि मेरा नाम तो शुरू ही है, वो कभी बदलता ही नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है, तो सोमनाथ नाम, शुभ नाम तो ज्योति बिंदु का है, और सोमनाथ नाम जब उनको साकार शरीरधारी है, जिसके मंदिर में पूजा होती है, श्रृंगार होता है, श्रृंगार आत्मा का होता है क्या? जरूर शरीर की यादगार है, शरीर का ही श्रृंगार होता है, आत्मा का कोई श्रृंगार नहीं कहा जाता। सभी के मंदिरों में भी जाकर के देखेंगे, श्रावण के महीने में सोमवार के दिन खास खास फूलों से सजाया जाता है, तो वो शिवलिंग जो निराकारी की यादगार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बिंदु होता है। बिंदु है तो शिवलिंग में बिंदु अलग से लगाने की क्या दरकार? तो लिंग है साकार स्वरूप की यादगार, जो साकार स्वरूप निराकारी सूर्य में रहने वाला है, कर्मेंद्रियों की स्मृति का भान नहीं रहता, इसलिए निराकारी सूर्य को चित्रकार ने लिंग के रूप में चित्रित किया। और वो निराकारी सूर्य बनती कब है? जब बिंदु उसमें प्रवेश करता है। तो मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुए तो कैसे? मुझे तो शरीर ही नहीं है तो कोई आत्मा को कैसे छुएगा? शरीर में प्रवेश करे आत्मा तब तो वो छूने में आए। कैसे हम पतितों से छूने कैसे ले गए? कोई हाथ भी नहीं लगा सकते किसको? कोई हाथ भी नहीं लगा सकते किसको? सूर्य ज्योति बिंदु को तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हाथ किसको लगाएंगे? साकार को हाथ लगाएंगे, उसको बंदी बना दो, असर तो उसके ऊपर पड़ेगा छूने का, साकार के ऊपर असर पड़ेगा ना। तो पतिता को छूने नहीं देते कौन? ये यादगार फिर शंकराचार्य ने बनाई हुई भक्ति मार्ग में, वो अपने से किसी को छूने छूने नहीं देते। क्यों नहीं छूने देते? वो क्या समझते हैं अपन को? वो समझते हैं कि हम ही शिव, हम है शिव है। तो उन्होंने नकल किसको किया? किस समय को नकल किया? संघ मुग्न में जब परमात्मा सुप्रीम सोल प्रवेश करता है प्रजापिता में, परमात्मा पांच संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो उस समय को उन्होंने फॉलो कर लिया। आज बाबा कहते कल फिर जाकर के मेरा कपास से बन जाती है, तो ऐसे पतितों को मैं कैसे छूने दूं? ऐसे को तो देखे भी नहीं, कौन कौन नहीं देखे? शुभ ज्योति बिंदु तो ऐसे हैं उनको तो सुबादा दो सकता ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करता। बात किससे करते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। बात करते मैं तो नहीं सुन सकती हूँ, तुम सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार मुझे उद्धार करना, मुझे कोई जानते नहीं है। सिर्फ पूजा करते हैं परंतु उनको जानते थोड़ी है, ये गीता का भगवान है और यहाँ करके ध्यान देते गीता ने कृष्ण का नाम डाल दिया, कृष्ण ने ज्ञान दिया तो बाकी शुभ क्या करते है? ये भी सूचन कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया क्या समझते है? संगमी की दुनिया के ब्राह्मण क्या समझते है? तो गीता का ज्ञान किसने दिया? कृष्ण ने दिया, माना कृष्ण की सोल ब्रह्मा ने दिया, ब्रह्मा को गीता का भगवान समझ लिया। तो बाकी सूर्य क्या करते हैं? सब मनुष्य समझते हैं, वो आते नहीं है। कौन क्यों नहीं आते? अरे पते तो पावन कृष्ण को थोड़े कहेंगे, तो कृष्ण आएगा तो पति से पावन बन जाएंगे। पतितों को पावन बनाने के लिए मेरे को आना पड़ता है। पति तो पावन तो मुझे कहते हैं, तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं? कितना रिगार्ड? नहीं तो डिसरिगार्ड करते रहते। क्या डिसरिगार्ड करते रहते? क्या डिसरिगार्ड करते हैं? पति तो पावन मुझे कहते हैं ना, तुम्हारे में भी कोई छोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं? रह तो देखो कितना साधन है, समझाते भी है। मैं साधु आज का भी बाप हूँ, उनका बाप हूँ। साधुओं का नाम क्या दिया? साधु। क्यों नाम दिया साधु? क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करने की साधना करते हैं। इंद्रियों को नीचे गिरने से रोकने की साधना करते हैं। तो इसका मतलब पतित हुए या पावन हुए? पतित हुए ना, क्योंकि खुद ही साधना करते इन सब का मैं उद्धार करता हूँ। जो भी शंकराचार्य है इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूँ। सभी लोगों के बाप जो है वो है, मैं ही सभी आत्माओं का बाप हूँ। मेरी सब पूजा करते हूँ। शंकराचार्य का कितना मान है? सब माने कौन कौन? मेरी सब पूजा करते हैं, सब में कौन कौन आ गया? सब धर्म पिताएं आ गए। जो भी धर्म पिताएं हैं उस निराकार ज्योति को सब मानते। शंकराचार्य का देखो कितना मान, बड़े से बड़ा श्रेष्ठ है शंकराचार्य। मेरी सिर की पूजा करते हैं, वो स्वयं आदि यहाँ सन्मुख बैठे। वो शंकराचार्य आगे तो गर्भचित्र की पूजा करते हैं और यहाँ तो बाप चैतन्य में सन्मुख बैठे हैं। परंतु सभी समझते थोड़े ही है कि हम किसके सामने बैठ रहे हैं। आत्मा जन्म जन्मांतर के दो अभिमान पर ही नहीं है, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, इसलिए बाप को पहचान नहीं सकते। देह को और देह के बाप को ही देखते, जो ही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चले। उस बाप को है जो ही अभिमानी हो तो किस बाप की तरफ बुद्धि जाए? मन श्रीम बिंदु की तरफ बुद्धि जाए कि पतितों को पावन बनाने वाली सोल शुभ ज्योति बिंदु की है। जिस तन में प्रवेश किया उसका तन जो धारी है आत्मा, वो पतितों को पावन बनाने वाली नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर रहेगा? सूर्य के ऊपर रहेगा। प्रजापिता के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, लेकिन बेसमझ है तो कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर रहता है? प्रजापिता के ऊपर जो भोगी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है। मुरली ने क्या बोला, तुम बच्चे क्या कुछ हो, तुम बच्चे जब डायरेक्शन मिलता है उनके द्वारा तुम क्या समझो, कितने डायरेक्शन दिया शिव बाबा ने, डायरेक्शन दिया तो तुमको शिव बाबा ही याद रहेगा। अगर तुम ये समझोगे कि ये तो देहधारी ने डायरेक्शन दिया तो तुम नीचे गिर जाएगा। आत्मा जन्म जन्मांतर के देह अभिमानी का गिर गई है। अगर देह अभिमानी हो तो उस बाप को याद करो और बाप की श्रीमत पर चलो। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सात प्रकार की है। अंत में पूरे देह अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रह जाएगा। पूरे पास कौन होंगे, जिनमें देह अभिमान बिल्कुल नहीं रहेगा। कितने निकलेंगे, आठ निकलेंगे। बाप तो गुप्त है, दूसरा देश उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां जब शंकराचार्य के पास गई तो उनको समझाना बड़ा सहज है, शिव के मंदिर में भी जाकर के समझा सकती हूँ। कुमारी ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है सुनको। महाभारत में प्रसंग आता है कि जन्मजात ब्रह्मचारी कौन थे, भीष्म पितामह, और उनको किसने बाण मारे, कुमारी ने। तो कुमारियों ने शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर है, लेकिन शंकराचार्यों को किसका परिचय है स्वीकार हो पाता है, है? क्यों, कुमारों ने क्या पाप कर दिया। हाँ भले कुमार हैं, लेकिन आज की दुनिया में कुमार बाहर घूमते और कुमारियां भारत में अंदर रहती है, तो ज्यादा प्योरिटी की पावर किसकी होगी, ज्यादा संग का रंग किसको लगता है, कुमारों को संग का रंग लगता है और कुमारियों संग के रंग से सुरभि शक्ति लगती है। तो कुमारियों ने भी शिव बाबा का परिचय दिया है, माने जितनी प्योरिटी की पावर होगी उतना दूसरों को तुम लगेगा। पवित्रता की पावर नहीं होगी तो दूसरों को तीर भी नहीं लगेगा। दूसरों को मैंने खासियत को जो शरीर से पवित्र रहने वाले शंकराचार्य याद है, हड्डी की पवित्रता धारण करने वाले, उनको भी तीर तब लगेगा जब उनसे जास्ती पवित्र आत्मा होगी, नहीं कुछ वो नहीं लगेगी। इसलिए शंकराचार्य आदि भी देवियों की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं, कोई भी देवी को औरत के रूप में नहीं दिखाते, किस रूप से दिखाते हैं, कुमारी के रूप में दिखाते हैं। तो है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर है, कुमारों ने भी परिचय दिया होगा, किसको, शंकराचार्यों को परिचय दिया होगा, माना परिचय देना अलग बात है, लेकिन उनको कन्विंस करके झुका देना, उनको जीते जी मार देना, ये अलग बात है। माताओं को खास उठाते क्योंकि उन्होंने सर्विस जास्ती की है पुरुषों से, माताओं को उठाते हैं खास। अरे तो कुमारी भी बात कर रही थी, फिर माताओं का नाम क्यों ले दिया। हाँ बाबा की जब कुमारियां बनती हैं तो बोरी क्या बन गई, माता बन गई। तो माताओं में सबसे बड़ी माता कौन होती है, जगत अम्बा जिसको कहती, फिर जगत अम्बा की भुजाएं भी माना सहयोगी शक्तियां भी, तो माताओं को खास उठाते क्योंकि उन्होंने सर्विस जास्ती की है पुरुषों की। कैसे जास्ती करी की है, पुरुष से इधर उधर घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनको आने जाने का कोई बंधन नहीं है, घूमने फिरने का कोई बंधन नहीं है, तो तरुण से पुरुष जास्ती करेंगे या कुमारियाँ जास्ती सर्विस करेंगी, माताएं जास्ती सर्विस करेंगी। माताओं को तो फिर भी आज की पाप की दुनिया में अपने शरीर की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत वातावरण में रहना जरूरी है, रहना पड़ता है, तो ज्यादा सर्विस करने में तो कौन बनेगा? हाँ हाँ, उनमें प्योरिटी जास्ती होती, एक के प्रति भावना, एक के प्रति श्रद्धा विश्वास जास्ती होता है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। मैंने बाबा ने किस तरह की सलाह दी है, कौन सी सर्विस की तरह शौक होना चाहिए, कैसी सर्विस? सर्विस तो सब करते हैं, लेकिन प्योरिटी से भरी पूरी सर्विस होनी चाहिए। एक बात दूसरा अनुकूल, रग रग में एक बात के प्रति भाव बैठा हुआ है, दूसरे किसी के प्रति श्रद्धा नहीं बैठी होनी चाहिए। जैसे उसे पढ़ाई का भी शौक होता है ना, तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। वो है जिस्मानी और ये है रूहन। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। समझो अभी उसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उसकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु विनाश तो सामने खड़ा है, उस बच्चे से प्राप्ति क्या होगी, पाएंगे क्या? उतना अब समय ही नहीं है जो कुछ पा सके। यहाँ से भी जाकर के जन्म लेते हैं, परंतु वो भी समझेंगे तो कुछ भी नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख के गया, जो कुछ भी सीख के गया होगा, उसी अनुसार छोटे पन में शिव बाबा को याद करता रहेगा। क्या कहा? एक बार ब्राह्मण बन जाता है तो ब्राह्मण पढ़ने के जो भी संस्कार है वो बन जाते, छोटा बच्चा बनेगा तो भी बाबा को, बाबा के प्रति उसकी लागत लग जाएगी। एक बाबा और दूसरा अनुकूल, जिसको मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वो बिंदु आदि को कुछ नहीं समझेंगे। क्या कहा? एक मुरली ने बताया कि बच्चों को ये कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम बिंदु को याद करो, बिंदु से उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। क्या कहना चाहिए? तुम बाबा को याद करो। सिर्फ सो बाबा कहते रहेंगे, सो बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शो बाबा कहते रहते हैं, तुरंत मत सुगति हो जाएगी। कहाँ आते हैं? हैं? बाबा के सामने ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, वो बिंदु को याद नहीं करते कोई, लेकिन उनकी बुद्धि में शो बाबा बैठ जाता है, ये शो बाबा है। तो फिर उनकी अंत मत कैसे हो जाएगी? अंत मत सुगति, उन्हें बिंदु को तो याद ही नहीं किया तो अंत मत सुगति कैसे हो जाएगी? हाँ, बिंदु को तो याद जानते ही नहीं, साकार बिंदु को कैसे देखेंगे? नहीं, वो साकार की जैसी स्टेज होगी वो स्टेज उनकी भी, उनकी भी बन जाएगी, क्योंकि उनमें अभी विचारी याद समाई जाती है। बच्चों की सात्विक बुद्धि होती है, तो सात्विक बुद्धि में जैसे कोरे कागज के ऊपर चीज छप जाती है, ऐसे बच्चों की बुद्धि में शिव बाबा छप जाते, तो अभी विचारी याद हो जाती है, तो अंतमति सुगति हो जाएगी, ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब शंकराचार्य सूर्य की पूजा करते हैं, ज्ञान तो थोड़े ही मंदिर में पूजा तो सूर्य की करेंगे, सूर्य की पूजा करेंगे, लेकिन ज्ञान तो नहीं है। जैसे छोटा बच्चा सूर्य सूर्य कहते समझते कुछ भी नहीं, तो ये भी पूजा करते, परंतु उनको पहचान कुछ भी नहीं, तो उनको बतलाना चाहिए तुम जिससे पूजा करते हो वो ज्ञान का सागर गीता का भगवान है। क्या तुम जिससे पूजा करते हो इतना भाव रखते हो तो जरूर कुछ करके तो गया होगा, क्यों पूजा करते हो? पूजा का आधार क्या होता है? शंकराचार्यों की पूजा क्यों होती है? पवित्रता के आधार पर। कुमारियों की पूजा क्यों होती है? पवित्रता के आधार पर तुम शुभ की पूजा तुम क्यों करते हो और कन्याएं भी जाकर के शुभ की पूजा करती है क्यों करती है क्यों तो कन्याओं से भी जाती उन शंकराचार्यों से भी जाती पवित्रता की धारणा किसके अंदर प्रत्येक छोटी है संसार में जो परमात्मा पायत है वो संसार में सबसे जाती उबर प्योर की सोच में संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसकी सबसे जाती दुनिया में पूजा होती सबसे जाती मंदिर है सबसे जाती उसकी लिंग मूर्ति है खुदाई में मिली है तो उनको बतलाना चाहिए तुम जिसकी पूजा करते हो वो गीता ज्ञान का सागर गीता ज्ञान दाता वो अभी हमारे सन्मुख आए हुए हैं हम उनको पहचानते हैं तुम पहचानते नहीं वो हमको पढ़ाए रहे इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं है जो कह सके शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ाए रहे ये सिर्फ हम ही कहते हैं और कोई नहीं कह सकता तुम जानते हो लेकिन तुम बच्चे भी भूल जाते हो भगवान राज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ कौन सा योग जितना राज भरा हुआ है ये किसने कहा भगवान वाद का महाशत्रु है किसने कहा हैं? शिव बाबा ने कहा शिव बाबा ने कहा काम महाशत्रु है शिव बाबा का काम महाशत्रु है हैं? काम शिव बाबा का महाशत्रु है सुप्रीम सोल का महाशत्रु कहेंगे नहीं तो किसका महाशत्रु है बच्चों का महाशत्रु है जिसमें प्रवेश करते हैं उसका उसका महाशत्रु है उस पर जीत पहनो उस पर काम पर जीत पहनो जीत पहनो का क्या मतलब तो दाग खड़ा हो रहा है क्या अरे क्यों कहते हैं उस पर जीत पहनो कोई भाग रहा है क्या नहीं तो सन्यासी भागते नहीं है भागते हैं ना तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे सन्यासियों की शूटिंग नहीं होती है होती है ना जो इस युद्ध से भाग खड़े होते हैं उनकी शूटिंग होती है वो शूटिंग करते हैं तुम पर जीत पहनो जीत पहनो का ऑर्डर मिला है इसका मतलब घर गृहस्थ छोड़ करके भागने की बात नहीं है पुरानी दुनिया का संन्यास करो घर गृहस्थ बाल बच्चों का संन्यास करने की बात नहीं बताई तुम हठयोगी हद के संन्यासी हो तुमको बताओ तुम वो हठयोगी हठ पूर्वक तुम योग लगाने वाले हो और हम हैं सहज राजयोगी तुम हठ पूर्वक इंद्रियों का दमन करना चाहते हो हम हठ पूर्वक कुछ भी नहीं करते वो शंकराचार्य और ये शिवाचार्य वो हमको सिखलाते हैं कौन शिवाचार्य कृष्णाचार्य नहीं कह सकते माने कृष्ण की सोल ब्रह्मा की सोल कोई आचार्य आचार्य नहीं है, है? ब्रह्मा की सोल ने कोई आचरण नहीं किया माँ के रूप में भी पार्ट बजाया भी कौन से सोल ने बजाया सुरसी सोल ने उसमें प्रवेश करके माँ का पार्ट बजाया कृष्णाचार्य नहीं कह सकते वो तो छोटा बच्चा है कौन कृष्ण माना ब्रह्मा छोटा बच्चा माना बेबी बेबी चतुर में ज्ञान की दरकार नहीं बनती कृष्ण जो चतुर में होगा वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं बात कहाँ की संगमित की बात है जहाँ जहाँ से जो मंदिर है वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में सुबह के मंदिर कौन से हो सुबह के मंदिर में जाओ माताओं का जाना अच्छा है क्या कहा सुबह के मंदिर में माताओं का जाना अच्छा है कन्याएं जाए तो और उससे अच्छा क्योंकि माताएं तो फिर भी माताएं कन्याओं का डिसरिगार्ड वो कभी नहीं करेंगे। कौन जो पवित्र मंदिर में सन्यासी बैठते हुए हैं वो कन्याओं का डिसरिगार्ड नहीं उनका मान करते। कन्या जाए तो उससे अच्छा है, कहाँ जाए पवित्र मंदिर। अभी तो हमको बाबा से राजी भाग लेने, बाप हमको पढ़ाते हैं फिर महाराजा महारानी बनेंगे। उनके बाप ये है ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य नहीं दे सकता। ऐसी शिक्षा जैसे ऊंच से ऊंच बाप देते क्या बिंदु बिंदु रूप में नहीं मनुष्य रूप में ही देते हैं, लेकिन और कोई मनुष्य ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता। ये है ही कलयुग। सत्युग में था इनका राज्य, ये राजा रानी कैसे बने? इनको राज्यों के सूचना सीखना है। ये सतुत्व मालिक बने कौन? ब्रह्मा सरस्वती। जिसको तुम पूजा करते हो वो हमको पढ़ा करके सतुत्व का मालिक बनाते। सोचते तो हो कुमारिया पवित्र मंदिर में शंकराचार्य से जाते कहें क्या कहें? तुम जिसकी पूजा करते हो वो हमको पढ़ा करके सतयुग का मालिक बनाए रहे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना मालिक भी कैसे बनाए रहे? ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना तो स्वर्ग होने की शर्त किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? और कोई कहे कि ब्रह्मा तो ऋषि नैन में चला गया, वो तो सूक्ष्म बतन में चला गया स्वर्ग बनाने के लिए। कहाँ चला गया? स्वर्ग सूक्ष्म बतन में बनेगा क्या? साकार शक्ति पर बनेगा तो साकार में ब्रह्मा चाहिए ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई है और विष्णु द्वारा पालना, द्वारा मना नहीं दिया। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी है बाबा हम पतितों को पावन बनाओ। कौन कहते हैं? पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले जो है वो कहते हैं, उनका दिल कहता है बाबा अब तो हमको पवित्र बनाओ। उसे कहते हैं बाबा से कहते हैं। अब बाबा कौन? जिसको कहते हैं पहले वो बनेगा या कहने वाला पहले बन जाएगा? जो पवित्र मार्ग वाला खुद होगा वो तो पवित्र मार्ग की पढ़ाई पढ़ाएगा। जो खुद ही निवृत्ति मार्ग वाला है वो पवित्र मार्ग वालों को पढ़ाई कैसे पढ़ा सकेगा? तो जानते नहीं है कि बाप ने खुद पवित्र मार्ग में रह करके राजयोग सिखाया है। निवृत्ति मार्ग वाले साधु सन्यासी पवित्र मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखला सके। वो है पवित्र मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग वालों का गुरु नहीं बनना है। और बन पाए जबरदस्ती तो रिजल्ट क्या होगा? खुद भी नीचे गिरेंगे और उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरेंगे। जो पवित्र बनते हैं उनके वो गुरु बन सकते हैं। कौन? शंकराचार्य या साधु सन्यासी उनके गुरु बन सकते हैं जो हद की पवित्रता धारण कर सकते करते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं विकार के लिए शादी नहीं करते हैं, सिर्फ कंपेनियनशिप होते हैं। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो, अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बनकर क्यों ना जाकर के सर्विस करें? पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं कृष्ण तो हो नहीं सकता,
वो तो एक ही बार सत्युग में होगा। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट टू गॉड कौन बताया? मुरली ने नेक्स्ट टू गॉड चार नाम दे दिए। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कौन सा कृष्ण? सत्युग का। फिर बोला नेक्स्ट टू गॉड इज लक्ष्मी